Dharanari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giribara Dhari. Yasoda Nandana Brajajana Ranjana. Yasoda Nandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Giribara Dhari. Jaya Gopi Jana Vallabha. Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yasoda Nandana. Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yasoda Nandana. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Sri Sri Guru Gauranga Gandhari Jagannath Balabhadra Surya Ki Jai. Jai Nitya Prasam Parahamsa Paribhaja Stotra Sadhatri Samadhe Sivakam Tathami Sula Prabhupada Maharaj Ki Jai. Jai Nitya Prasam Paribhaja Stotra Sadhatri Samadhe Bhakti Siddhanta Sri Thakur Sula Prabhupada Ki Jai. Janamacharya Haridas Thakur Ki Jai. Samavata Bhakta Vrinda Ki Jai. Srimad Bhagavata Gandharaj Ki Jai. Nitya Gaur Vimanande Hari Hari Bol. Nama Shrestha Manumapi Sachiputra Matra Sarupang Rupang Tishakrajang Manupuring Mathuring Goshtavatim Radha Kunda Grivaro Maho Radhika Madhavasam Prapta Jishya Pajutipayam Sigurung Tang Nato Yasmi Vancha Kalpataru Vaisyakupa Sindhu Bevacham Paitanam Pavanibho Vaishnavibho Namo Namaha Bhakta Vihina Apara Adalakitamaditarangamadde Kripamai Tang Saranang Prapanne Brindi Namaste Charanaravindam. Brindi Namaste Charanaravindam. Ananda Lilama Vigrahaya Hemava Dibba Chavishundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Sasupani Vidachita Sadhuddha Sannabhava Paji Turu Chilla Krishna Sarastadiyam Vaitana Dukitam Jastatta Deepam Kuralam Tamakula Vrijignam Vasaso Nunato Yasmi Bhavi Bhavi Jatha Bhakti Padyasya Vajayati Tatha Kurisa Devi Sanatha Samajata Prabhu Nama Sankirtanam Jishya Sarva Pranasanam Pranamam Dukanamastustu Sarva Dukavinasam O Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नाश्च प्रयेष भद्रेषु नित्यं भागवता सेवया। भागवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नाश्चके। श्रीमद्भागवतम् नवम स्कंध अध्याय 18 श्लोक नंबर 51। एवं वर्ष सहस्राणि मन षष्ठाय मन सुखाम विदधानः ओपि न अतृप्तात् सार्वभौमः कत इन्द्रिये। एवं वर्ष सहस्राणि मन षष्ठिर्मन सुखाम विदधानोपि नातृप्तात् सार्वभौम कदिन्द्रिये। एवं वर्ष सहस्राणि मन षष्ठिर्मन सुखाम विदधानोपि नातृप्तात् सार्वभौम कदिन्द्रिये। एवं वर्ष सहस्राणि मन षष्ठिर्मन सुखाम विदधानोपि नातृप्तात् सार्वभौम कदिन्द्रिये। बोलो सब। सबका एवं इस तरह से वर्ष सहस्राणि 1000 वर्षों तक मना षष्ठे 5 ज्ञानेन्द्र तथा मन के द्वारा मना सुखाम मन द्वारा उत्पन्न क्षणिक सुख विदधानः संपन्न करते हुए ओपी यद्यपि न अतृप्त संतुष्ट नहीं हुए। सार्वभौम सारे जगत का राजा होकर भी कत इंद्रिय अशुद्ध इंद्र के कारण अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यद्यपि महाराज जजाति सारे विश्व के राजा थे और उन्होंने 1000 वर्ष तक अपने मन तथा 5 इंद्रियों को भौतिक संपत्ति को भोगने के लिए लगाया किंतु वह संतुष्ट नहीं हो सके। तात्पर्य कद इंद्र अर्थात अशुद्र इंद्र को शुद्ध किया जा सकता है जब इंद्रियों के समेत मन को कृष्ण भावना मध्य में लगाया जाए। सर्वे उपाधि विनुर्मुक्त तत्परित्र निर्मलम मनुष्य को समस्त उपाधि से मुक्त हो जाना चाहिए। यदि वह अपने को भौतिक जगत का भोक्ता मानता है तो उसकी इंद्रिय अशुद्ध होती है किंतु जब वह आध्यात्मिक अनुभूति हो जाती है और वह अपने को भगवान के दास का रूप में पहचानता है तो उसकी इंद्रिय तुरंत शुद्ध हो जाती है। शुद्धि की हुई इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ही भक्ति है। सेवनम भक्ति रुच्यते। कोई भले ही 1000 वर्ष तक इंद्रियों का भोग क्यों ना करे जब तक इंद्रिया शुद्ध नहीं हो जाती तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 9वें स्कंध के अंतर्गत राजा जजाति का यौवन को पुनर्प्राप्ति शीर्षक 18 अध्याय का भक्ति में तात्पर्य पूर्ण हो गया है। महाराज जजाति सार्वभौम सम्राट एशिया पूरा एशिया तो उन्होंने स्टोरी पे थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं किस प्रकार देवजानी से शादी हुआ। शादी होने के बाद शर्मिष्ठा को मिल गया फिर उनका ससुर जी शुक्राचार्य अभिशाप दिया फिर पुरु पुत्र से अपना यौवन लिया और पुरु को अपना बुढ़ापा दे दिया। इसलिए जरा पुरु पर बहुत खुशी रहा था। वृद्धावस्था कोई नहीं मांगता है लेकिन पुरु ने मांगा था। एक ही व्यक्ति है जो वृद्धावस्था को लिया था। इस प्रकार वर्ष सहस्राणी 1000 वर्ष तक विषय सुख भोगने का बावजूद ही तृप्त नहीं हुआ। कद इंद्रिय अशुद्ध इंद्रिय भक्तिवन ठाकुर भजन कहते हैं कोली कुकुर कदन यदि चाउले कलि युग पावन कलि भय नाशन श्री सची नंदन गाउले। सचिनंदन गौर हरि ये जो नाम है गौर सुंदर का सचिनंदन बहुत सुंदर और आकर्षण करने वाला नाम है। तो इस प्रकार इस नाम को अगर कोई उच्चारण करते हैं तो क्या होता है अनर्थ युक्त जीव भी अनर्थ मुक्त हो जाता है। कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार अपराध थाकले ना होय प्रेमेरो विचार गौर नित्यानंद नामे नहीं अपराधेर विचार नाम लेते प्रेम दये बहय सुधार। नाम लेते प्रेम दये गौर नित्यानंद सचिनंदन गौर हरे की जय। पद्मावती तनय नित्यानंद प्रभु की जय। ये जो नाम है आप पापी हो चाहे अपराधी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपको प्रेम प्रदान करेगा। इसका अर्थ ये नहीं निकलना चाहिए जहां हम दोनों काम करते रहेंगे और ये नाम लेते रहेंगे तो नाम अपराध हो जाएगा। जब महाप्रभु के द्वारा जगाई माता के उद्धार हुआ तब महाप्रभु ने कहा अभी तक तुमने जितना सारे पाप किया था सो मैंने ले लिया लेकिन इसका बाद मत किया करो। उन्होंने क्या बोला, आर नारे बाप, जो हो गया सो हो गया, अभी नहीं। ये सब शास्त्रोक्त विचार जब तक अपना हृदय में इसका आचरण नहीं करेंगे, तब तक ये जजाति महाराज जैसे विषय भोगते रहेंगे। उनका पास तो बहुत कुछ था, सार्वभौम सम्राट, कितना टैक्स मिलता था, और अकेला उनका नियंत्रक था, ऐसा नहीं ये 515 मेंबर लगा करके पार्लियामेंट में और उसका नियंत्रण करे, ऐसा नहीं था, अकेला नियंत्रक था। विषय का कोई कमी नहीं था, हमारे पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1 बेड हॉल किचन, बस बहुत हो गया। और इसी से लेकर के आज सुबह तोड़ते शाम को तोड़ते तोड़ते रहता है, उसको अंदर तोड़फोड़ चालू है, फिर भी हम अपना इंद्रियों को सुधार नहीं पा रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, इसे 500 स्क्वायर फुट ही है, किधर भी तोड़े किधर भी रतना ही रहने वाला है, फिर भी अपना सुविधा के लिए दिन रात उसको इसी का अंदर 500 फुट का अंदर ही हम घूमते रहते हैं। अगर हमें एक पूरा सोसाइटी मिल जाए तो क्या करेंगे। ये विचार जजाति महाराज इतना सब मिलने के बाद क्यों, कद इंद्रिय अशुद्ध इंद्रिय के द्वारा, जो इंद्रियों का शुद्धिकरण हो जाता है, जैसे जोगाई माता क्या हुआ, उन्होंने उसके बाद क्या किया, रोज दूल को हरिनाम करने लगा। सोचो, जिनको सुबह उठने से दारू चाहिए था, दारू में मुंह धोता था, दूसरा कुछ काम नहीं था, ब्रह्मांड में इतना सारा पाप है, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, जो विंशति प्रकार का पाप बताया गया है, एक को भी नहीं छोड़ा था, ये पूरा लाइफ में अपराध नहीं किया था। पापी व्यक्ति क्या निष्कृति है, अपराध क्या निष्कृति नहीं है, चाहे सेवा अपराध करो, चाहे धाम अपराध करो, चाहे बुन अपराध करो, चाहे भक्ति का चरण में अपराध करो, नया एडिशन है भक्ति अपराध, कि भक्ति का चरण में अपराध होने से भगवान का दर्शन सुख प्राप्त तो नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी भक्ति का चरण में अपराध नहीं करना चाहिए। तो भक्ति अपराध क्या होता है, भगवान का भक्ति को स्वीकारना, भक्ति सर्वोपरि है, जो व्यक्ति इसको मानता नहीं है वो भक्ति अपराधी है, भक्ति चरण में उसका अपराध है। क्योंकि भक्ति के द्वारा ही भगवान को दर्शन किया जा सकता है। रजो को मागी लो देखी लो तथा तो ना पाई लो सुख, भक्ति अपराधर कारण। जब कृष्ण ने मौजूदा कंस का धनुर्यज्ञ में तो रजक रजक में धोबी कंस का जो कपड़ा धोके ले जा रहे थे, बोला कपड़ा मुझे दो हम पीनेंगे, रजक ने क्या बोला, तुम इसका लायक नहीं हो। तो भगवान सचराचर मांगते नहीं किसी से, और उन्होंने मांगा। हम लोग भगवान को ऑफरिंग करते हैं, कृपा करके स्वीकार कीजिए, लेकिन वहां पर रजक का सामने भगवान ने मांगा, तुम मुझे वस्त्र दो, रजक ने दर्शन करने के बावजूद भी दर्शन सुख प्राप्त तो नहीं कर सका। तो दर्शन कैसे किया था, सरस्वती ठाकुर कहते हैं बहु जन्मों तपस्या किया था भगवान का दर्शन करने के लिए, इसलिए दर्शन तो किया, लेकिन भक्ति का ना मानने के कारण दर्शन में जो सुख होता है वो सुख प्राप्त तो नहीं कर सका। जैसे दक्ष प्रजापति अघमर्षण वर्ष में तपस्या किया बहुत सालों तक, लेकिन तपस्या करने के बाद ही भगवान अष्टभुज रूप में दर्शन देते, लेकिन क्या मांगा, हमें एक सुंदर पत्नी दीजिए जिससे हजारों हजारों बच्चा पैदा कर सकूं, ये नहीं बोल पाया, हमें आपका धाम में ले चलो। कि अपराधी व्यक्ति विषय सुख ही मांगेगा, भगवान का सेवा सुख कभी नहीं मांगेगा। दर्शन करने के बावजूद भी यहां विजयाति महाराज इनके आगे का समय लिखते हैं, जिन्होंने हजारों यज्ञ किया भगवान वासुदेव को संतुष्ट करने के, वासुदेव गुहा स्वयं दर्शन करने के लिए वासुदेव का सेवा करने हजारों यज्ञ किया। रूपा जी लिखते हैं अंदर में उन्होंने भगवान का दास बनने का इच्छा था। तो हमें देखते हैं इतना बड़ा विषयी भी जो पुत्र का जोगन लेकर के विषय भोग किया वो भी भक्त बन जाता है। तो बाकी लोग जो गृहस्थ भक्त नहीं बन सकता है, आराम से बन जाएगा। इनका भक्त बनने का एक ही कारण है, इनका जो अष्टादश पूजा पीछे का महाराज अम्बरीश ने श्रीमद् भागवतम प्रदान किया था। तभी गीता जयंती चल रहा है ना, चालू हो रहा है। तो अगर आप लोग भी एक एक गीता लेके किसी को प्रदान करोगे तो आपका भी आठवें पीढ़ी में जो आएगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। जिस प्रकार जगदादि महाराज का हुआ था, वो आठवें पीढ़ी में अम्बरीश महाराज, इसका क्या था, कोई साधु संघ वगैरह जगदादि से कुछ था ही नहीं। वो भागवत प्रदान करने का बजट आठवें पीढ़ी का बाद जगदादि भक्ति में लग गया। इसलिए अगर एक भगवत गीता किसी को दे दिया जाए तो क्या होगा, हमारा भी आठवें पीढ़ी में जो आएगा ना वो ऑटोमेटिकली भक्त बन जाएगा। जितना भक्त बन जाता है 90 रुपीज, तो 90 रुपये तो काम में रह जाता है। सोचो अभी क्या चाहिए। तो भक्ति कितना बृहद वस्तु है। सामान्य भक्त्यांग आप कुछ करो चाहे ना करो, इतना करने से आपको आठवें पीढ़ी का जो आएगा वो उद्धार हो जाएगा। भक्तांग को कितना भक्ति विलास, इसलिए कहते हरि भक्ति विलास, हरि का भक्ति का विलास। श्रीराजी महाराज इतना सब करने के बाद उन्होंने तृप्त नहीं हुआ। रूपा जी की तात्पर्य लिखते हैं, सर्वोपाधि विनुर्मुक्त तत्परित्र निर्मलम। सर्वोपाधि क्या है, वर्णगत उपाधि, आश्रमगत उपाधि, ऐश्वर्यगत उपाधि, ऐसे बहुत सारे उपाधि है संसार में। पोजीशन, पोस्ट, पोस्टगत उपाधि ये भी एक है खतरनाक। कोई बोला हम ब्राह्मण है, जैसे मैं भी बोलता रहा था मैं ब्राह्मण हूं। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चार वर्ण आश्रम कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर इसको सही तरीके से पालन किया जाए तो भक्ति उन्मुख होने का द्वार है। वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम चारावता पुरुषण पर प्रमाण विष्णु राजते पंता नान्य तोषणी कारणम। ये जो वर्ण और आश्रम को तो जो व्यवहार दिया गया है इसका एक ही उद्देश्य है, भगवान विष्णु का संतुष्टि करने का। अगर आप इसमें रह करके भगवान विष्णु का संतुष्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है, सकर्म कोरिलो से रोहिरो में पड़ी मजे। रोहिरो क्या जानते हो, एक नरक है। आज नरक में रूरू नाम का कीड़ा रहता है, आप लोग फूट देखे होंगे, देखे ना, उसमें कीड़ा लगता तो क्या होता है, फूट का हाल बेहाल कर देता है। उसी प्रकार अगर ये वर्ण और आश्रम धर्म सही तरीके से पालन करेंगे तो मरने के बाद हमें वो नरक मिलेगा। और उस नरक में क्या होगा, जैसे फूट को कीड़ा खाता है ना, तो हमको फूट समझ को खाते रहेगा, कीड़ा लोग चाटनी बना के खा जाएगा। इसलिए कहते हैं सकर्म करिलो रोई रोबे पड़ी मजे। आप वर्ण और आश्रम धर्म जहां भी पालन करो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उसका साथ में हरि भजन करोगे तो आपका उद्धार हो गया। इसलिए कहते हैं महाप्रभु एहो वाज्य आगे को अरे फालतू है आगे बोलो। ये जो सर्व उपाधि विनुर्मुक्त तत्प्रत्ययेन निर्मलम, ये इतना सारे उपाधि से मुक्त होकर के क्या करना पड़ेगा, सदा सर्वदा मैं हरि का दास हूं, गाने प्रयासे मधुपाश्य जीवंत एवं सन्मुख रितांग भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितांग सुनुगतांग मनोबांग जो प्राय सोजीत जित पासी सोई सोई लक्षण। ज्ञान का प्रयास छोड़ देना चाहिए और जिस जगह में हो उसी जगह में रहो, चाहे ब्रह्मचारी हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो सन्यासी हो भी हो उसी जगह में रहो, उसके लिए टेंशन लेने कोई जरूर नहीं है। लेकिन उसी जगह में रह करके साधु मुख विगलित भगवान का कथा का अगर कर्ण पटकथा में श्रवण करते हैं तो क्या होगा, जो प्रायसी जितुपासी सोई तैलकम, जिसको कोई नहीं जय कर सकता है उसको भी आप जय कर सकते हो। यहां पर महाप्रभु ने कहा एहो हाय आगे को हर, ये ठीक है अभी तक तुमने ठीक करा, अभी आगे बोलो ये सर्वोपाधि विनुर्मुक्त तत्परितन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशम श्रवणम भक्ति रुच्यते, इसको भक्ति कहते हैं। इस लोग याद रखो, अगर कहा जाए भक्ति किसे कहते हैं तो अन्नाभिलाषित सिन्ह नहीं आएगा, ख्याल रखना अन्नाशित सिन्ह उच्च भक्ति है, भक्ति इसे कहते हैं। जब समस्त उपाधि से मुक्त होकर के तो अब हम समझते हैं, अभी आप लोग समझ लो जो आप लोग भक्ति कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, वो अपना अपना थर्मोमीटर लगाओ कि हम उपाधि से मुक्त हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो भगवत सेवा नहीं हो रहा है, तब भक्ति नहीं कर रहे हो। अगर मुक्त हो चुके हो फिर हरिनाम कर रहे हो तब भक्ति कर रहे हो। श्लोक इस प्रकार कहते हैं, हम क्या कहेंगे। इसलिए जब तक इंद्रिय अशुद्धि रहेगा तब तक ये काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य अगर आप टेरेस में बैठ कर रहोगे ना फिर भी सुधार नहीं पाओगे, कभी नहीं हो सकता है। इसको सुधारने के लिए एक ही रास्ता है, भगवत चरण भक्ति। जगाई माता के भक्ति मिल गया उसके बाद पाप कार्य किया, लक्ष को हीरा विश्वावृत्ति छोड़ दिया जब भक्ति मिल गया, रोज तीन लक्ष को हरिनाम जप रूप सनातन, जो भक्ति मिला पूरा ब्रह्मांड को ताक करके चला गया, फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, दास गोस्वामी इंद्र सम ऐश्वर्य को विष्ठावत ताक कर दिया, और हम थोड़ा से अपना स्वार्थों को ताक नहीं कर पा रहे हैं, हम उसमें कानून लगा देते हैं, इसका मतलब हम कितना बड़ा भक्त है, विचार करो ना। तो भक्ति जिसका होगा वो ये सब में परे रहेगा, और भक्ति लाभ कैसे होगा, तन्नाम चरितादि सितत्व विद्या पित्व तत्व रसना न रोचिकानु किंतु दरादनु खुलसैव दृष्ट्वा साध तद्गद मूल हंती, इसको आचरण करना पड़ेगा। श्रीपो गोसाई श्रीगुरु रूपेते शिक्षा दिलो मोर काने जानो मोर कथा नामेर कांगाल रोती पावे नाम गाने कृष्ण नाम रूप गुण सुचुरित परम जतने करी रसना मानसे करह नियोग क्रमविधि अनुसरी ब्रजे करीवास रागानुगा हया शरण कीर्तन कर एनिखिल काल करह जापन उपदेश सार धर हारूप गोसाई दया करी कवे दिवे दिने ब्रजवासा तब पदानु होइचे ए दासेर आशा। इसका अनुवाद है श्लोक का, जानो मोर कथा नामेरो कांगाल रोती पावे नामो गाने। अगर श्रद्धा पूर्वक हरि नाम का कीर्तन करते हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, सर्वश्रेष्ठ डिवोटी कौन है, कौन बता पाओगे, ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ डिवोटी वही है जो जानता है नाम ही सर्वोपरि है, नाम छोड़ के दूसरा कोई साधन श्रेष्ठ नहीं है, वो सर्वोपरि डिवोटी है, उससे बड़ा भक्त कोई नहीं। वही और वही गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरु है। जानो मोर कथा नामे रो कांगाल रति पावे नाम गाने। कृष्ण नाम रूप गुण सुचरित परम जतने करी कृष्ण नाम कृष्ण रूप कृष्ण गुण कृष्ण लीला कृष्ण परिकर वैशिष्ट्य राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर गाने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पत्नी घर में है तब जुगल किशोर कैसे करोगे? आपका इंद्र शुद्धि हुआ क्या? नहीं हुआ। चामर डुलाबो कवे हेरी मुख दंद, भगवान का मुख कमल दर्शन कौन करेगा? रूप गोस्वामी पाद भक्ति रस सिंधु में कहते हैं, जब बंशीवट में गोविंद देव का को कोई दर्शन करना चाहते हैं उसका पहला कर्तव्य क्या है? संसार सुख को भूल जाए तभी तो गोविंद देव का दर्शन होगा। हम तो कितना बार दर्शन करके आ गया, ये संसार सुख गया क्या? नहीं गया। इसलिए कहते हैं कृष्ण नाम पहले गाना चाहिए। जब नाम में निष्ठा होगा तो आप कृष्ण रूप, जब रूप में निष्ठा होगा नाम और रूप में निष्ठा होगा तो आप कृष्ण का गुण, नाम रूप गुण जब हो जाएगा तब कृष्ण का लीला, नाम रूप गुण लीला जब हो जाएगा तब कृष्ण का परिकर वैशिष्ट, ये विधि है। कृष्ण नाम रूप गुण सुचरित परम जतने करी रसना मानसे करह नियोग क्रम विधि अनुसरी। रसना शब्द का अर्थ क्या है? रसगुल्ला खाया, पेट को टेस्ट लगता है कि जीहा को टेस्ट लगता है? तो रसना शब्द का जीहा। रसना मन से मन करह नियोग, जब हरि नाम उच्चारण करोगे तो जीहा और मन साथ में होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? अगर साथ में नहीं चल रहा है, आपका माला हो गया, आप खुश हो गया, मेरा सोलो माला हो गया, लेकिन आपको क्या मिलेगा? जीरो, कुछ नाम अपराध मिल जाएगा। आपने सोलो माला जप किया, आपको नाम अपराध मिल जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, ये भी थोड़ा विचार दे देता हूं। जो हरि नाम जप करते करते बहम जप करते हमारा हजारों विचार मन में आते रहते हैं, सबको आता है, इसमें घबराने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब भगवान का नाम आप उच्चारण करोगे तब ये सब आएगा। इससे विचलित तो हुए बिना आप भगवान का नाम का अगर श्रद्धापूर्वक जाप करते रहोगे तो वो लोग अपना भाग जाएगा। लेकिन अगर आपका श्रद्धा नहीं है तो वो लोग भागेगा नहीं, वो लोग आपको और पीड़ा प्रदान करेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए, अगर एक भी माला हम जाप करते हैं तो रसना मन से करह नियोग, जीहा और मन को उसमें लगाओ। ये नहीं है वो आ रहा है उसको थोड़ा देख लूं, अरे वो आया उसको थोड़ा बात कर लूं, अरे वो आ रहा है उसको थोड़ा पूछ लूं ना क्या है, तो क्या हुआ? अपराध। हम तो लड्डू खाते रहेंगे मन मन में, प्रभु जी 32 माला कर रहा हूं, बारे कितना बड़ा भक्त है, रोज 32 माला कर रहे, जानते तुम उसको? तो मैं लाख करता हूं, लेकिन अभी तक प्रेम नहीं मिला, अभी तक विषय भोग नहीं किया, अभी तक काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य किया ही नहीं, क्या फायदा काठी गिनने से? इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं रसना मानसे करह नियोग क्रम विधि अनुसरी। ब्रजे करी व्यास रागानु का हो या शरण कीर्तन करो, ब्रजे करी, ब्रज मतलब वृंदावन, ब्रज मतलब नवद्वीप, वहां निवास करने 18 लाख रुपया चाहिए, तभी आप वन रूम एक बुझने के लिए जगह मिल सकता है। बोला प्रभु ब्रज कैसी बात करेंगे, वृंदावन गया था सब, गया था ना, देख के आया, सब देख के भी आया, अभी देखने के बाद जिसको जो जाएगा पसंद है यहां बैठो और उसी को ध्यान में रख के हरि नाम करो, ब्रजवास हो गया कि नहीं हो गया। हर बार ब्रज में जाके पिकनिक मना के जरूरी क्या है, कोई आवश्यक है, कोई आवश्यक नहीं है। एक बार गया देख के आया और वहां देखने के बाद जो जाएगा जिसको पसंद है, किसी को जमुना का किनारा पसंद है, किसी को रमावती का अपना राधा श्याम सुंदर प्रिय है, कोई गोविंद प्रिय है, कोई राधा कौन श्याम कौन मानसिंह होगा ऐसा देखता जो है ना कुसुम सरोवर, जिसका जो प्रिय है हाथ में माला को पकड़ो और अपना मन में विचार रखो मैं इस जगह में बैठ के हरिनाम कर रहा हूं, हो गया ना आपका ब्रजवास। हरि भजन करने के लिए भजन गुरु का एकांत आवश्यक होता है, जब तक भजन गुरु शिक्षा नहीं देगा तब तक भजन नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ब्रजे करिवास लगान हुआ हैया सरण कीर्तन कर ए निखिल काल कर जापन उपदेश सार धर, यही उपदेश है बाकी कोई उपदेश नहीं, उपदेश अमृत है ना, यही उपदेश है बाकी कोई उपदेश नहीं है। ए निखिल काल कर जापन दिन जला बोले हई भी व्यस्त उदित अरुण उदित अरुण हईल दिन गला बोले हई व्यस्त तबे के ना बोझिले ना बोझे हृदय राजे, अभी सुबह हो गया शाम हो गया रात हो गया फिर सुबह हो गया ए दिन गला बोले हई व्यस्त, अरे समय चला गया अभी कितना काम पड़ा हुआ अभी ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, आपको लिए रुकने वाला नहीं है वो अपना चलते रहेगा, इसमें व्यस्त होने का कोई जरूरी नहीं है। ना बोझे हृदयराज, हृदयराज कौन है भगवान, उनको भजन करो तो दिन रात का टेंशन लेने कोई जरूरी नहीं है। ये निखिल काल करो जापन उपदेश सार धरो हार रूप गोसाई दया करी कवि दिवे दिने बड़े जवाता, हे रूप गोस्वामी कब कृपा करके आप मुझे ब्रजवास प्रदान करोगे, तब पदानुक हरि के दास फेरो आप कि जब तक ये विधि को पालन नहीं करेंगे तब तक संसार का जो सुख है उसको त्याग नहीं कर सकते हैं। श्रीवास पंडित पुत्र मर गया नो टेंशन, हरि कीर्तन चालू है क्योंकि इन्होंने निखिल काल को रहो जापन, उन्होंने इस प्रकार जीवन जापन निर्वाह किया, सबको तो मरना है या हमको भी मरना है, इसके लिए टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। संसार चक्र चलते रहेगा, जन्म होते रहेगा मृत्यु होते रहेगा, सुख मिलते रहेगा दुख मिलते रहेगा। और रंतिदेव 21 दिन तक उपवास किया, 21 का 28 दिन, 28 दिन उपवास करने के बाद भी उनको भोजन नहीं मिला था, फिर भी लोग आके खा के चला गया, हमें तो रोज कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं। अगर इंद्र को दमन करना है अनर्थ को निवृत्त करना है तो भगवान का नाम श्रद्धा पूर्वक लेंगे तो भी हो सकता है, इसलिए कहते हैं तत्परेतन निर्मलाम। कोई भले ही हजारों वर्षों तक इंद्रिय का भोग क्यों ना करे, जब तक इंद्रिया शुद्ध नहीं हो जाती तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता है। गृहस्थ लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं, इतना सब होने के बावजूद वो सुख है क्या, नहीं, और चाहिए और चाहिए, लेकिन मिलने के बावजूद भी वही हाल है। इसलिए जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक इंद्र अशुद्ध रहेगा और ये होते रहेगा। तो हमारा दो रास्ता पड़ा हुआ है, एक ग्रंथ लेके प्रदान करना, दूसरा अपना साधन भजन करना। अभी थोड़ा शालग्राम का बारे में बताऊंगा क्योंकि सुन का अभी शालग्राम का विवाह आ रहे हैं, तो उसमें शालग्राम क्या वस्तु है, तुलसी जी का अभिशाप का द्वारा भगवान नारायण पाषाण बन गया। और वो कहाँ रहा? गंडकी नेपाल में है। दो जगह में ना प्रतिष्ठित शिला मिलता है, एक गोवर्धन शिला, एक शालग्राम शिला। ये दोनों को प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ता है, बाकी पूरा विश्व में किधर भी आपको नहीं मिलेगा, इंडिया और नेपाल। गोवर्धन शिला लाना बहुत भारी है, क्योंकि वो जितना बड़ा शिला लाओगे उतना बड़ा सोना रख के आप ला सकते हो। अगर एक किलो शिला चाहिए तो एक किलो वहां सोना रख के और एक किलो का शिला उठा के लेके आ जाओ, सस्ता है। किसी ने दिया तो बात अलग है, लेकिन आपको अगर लाना है तो आप नहीं ला सकते हो। नेपाल जाओगे तो गंडकी में सालग्राम शिला ला सकते हो, कम से कम जाने के लिए 11,000, आने के लिए 11,000, वहां रुकने के लिए 11,000, 33,000 चाहिए नेपाल आने जाने के लिए कम से कम। तब वहां से आप एक दो ज्यादा से चार ला सकते हो। इससे ज्यादा लाने जाओगे तो पुलिस आपको पकड़ेगा और आपको सब कुछ ले भी लेगा और दूध अंडा भी दे देगा। ये को कहते हैं आपको पूजा करना तो एक दो ठीक है, अब इतना सारा क्यों लेके आते हो? बिजनेस करना क्या क्या? तो छोड़ा लेता है, एक भी नहीं देता है। जाओ जैसे आया वैसे जाओ, 33,000 आपका गया तो नेपाल दर्शन हो जाएगा। तो कहते हैं रिवार गंडकी जो वेरी एंशियंट रिवार एंड दी जेलोसी से दैट एग्जिस्टेड इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय रेंज। ये जो गंडकी रिवार है, बुक इंग्लिश में है, चिंता मत करना, ये हिंदी में मिलना दुर्लभ है। तो गंडकी नदी जो नेपाल में अवस्थित है और बहुत शुद्ध है, उस जगह में शालग्राम शिला मिलता है, जो हिमालय का रैंक जो है वहां पर है। उसके भी दिया है नॉर्थ 27 डिग्री 27 डिग्री और ईस्ट 83 डिग्री एंड 56 डिग्री। द्राघिमांश और अक्षांश कहते हैं इसको जियोग्राफी में, उस जगह में स्थित है। तो वहां पर ये शालग्राम शिला मिलता है। देयर आर नेमोरियस पॉपुलर बिलीफ कॉन्सिडियन शालग्राम शालग्राम एलोंग साइड तुलसी लीव एंड कॉन्च प्लेस इन वन प्लेट इज रिगार्डेड एज मोस्ट मेरिटेरियस। अगर एक थाली में शालग्राम शिला रखा जाए और उसमें तुलसी और चंदन के साथ रखा जाए शालग्राम शिला में, और एक दक्षिणावर्त शंख, तो महागणी व्यक्ति है। एक प्लेट में शालग्राम शिला चंदन तुलसी लगा करके और एक जो राइट हैंड शंख उसको रखो तो सबसे महागणी है। एनी रिलीजियस ऑब्जर्वेशन गिव कॉन्फिडेंस ऑफ क्विज एंड अर्शिप शुड लीव प्री फेयरवेल बी डन एसोसिएशन विथ ए शालग्राम। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड 19 नंबर में देते हैं व्रत दान प्रतिष्ठा श्राद्ध देव पूजा ये सब जिस जगह में शालग्राम शिला है ये सबसे अच्छा होता है। पद्म पुराण में कहते हैं शालग्राम शिलाग्रज सकृत श्राद्ध कृतम भवे पसंती पितर स्तेषांग विष्णु लोकं न संशय। पद्म पुराण उत्तरखंड 187 नंबर श्लोक है। जो शालग्राम शिला पितृपुरुष का श्राद्ध करते हैं उनका पितृपुरुष लोग विष्णु लोक में सदा सर्वदा निवास करते हैं। স্থালগ্রাম শিলাত এবং মৃত্যুকালে যোভয় লভে সর্বপাপ বিদুর্মুক্ত বিষ্ণু লোক সগচ্ছতি। जो सालग्राम और शिलात एवं सालग्राम का अभिषेक करने के बाद जो चरणामृत है जो उधर दिया जा रहा है, जो भी मृत्यु काल में अगर उसको मिल जाता है तो समस्त पापों से निर्मुक्त होकर के विष्णु लोकं सगच्छति भगवान का धाम चला जाता है। सालग्राम और शिला जत्र तत्र सन्निधो हरि तब सन्निधो तज प्राणा विष्णु लोक वहीं होती है। जिस जायगा में सालग्राम शिला है उस जायगा में भगवान श्रीहरि सदा सर्वदा निवास करते हैं। उनके सामने अगर कोई व्यक्ति देह को त्याग करता है तो विष्णु लोक में चला जाता है। पायश्चित्य समुत्पन्न किं दाने किम उपसने चांद्राणि किं त्यादि पित्ता पादुकं सूचि। द राइट्स ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सिन पायश्चित्य, जो पाप का प्रायश्चित्त किया जाता है, बिकम इफेक्टिव मोर बाय ड्रिंकिंग द वाटर इन व्हिच दी स्टोन्स आर वॉश्ड देन बाय गिफ्ट्स और फास्टिंग और बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस काइंड। अगर भगवान का अभिषेक किया हुआ पानी अगर वो पान करता है तो पाप का प्रायश्चित्त करने से जो लाभ नहीं होगा वो पानी पीने से उतना लाभ हो जाएगा। चंद्र सूर्य चंद्र ग्रहे प्राप्त जत्किंचित क्रियते गृहे तीर्थे कोटि गुणं पुण्यं सालग्राम शिलाग्रत। इन टाइम्स ऑफ सोलार और व्हाट एवर येचर अंडर टेकन बिकम्स ऑल द मोर इफेक्टेड व्हेन डन इन फ्रंट ऑफ ए सालग्राम स्टोन सो सेज हेमाद्री। सूर्य ग्रहण में चंद्र ग्रहण में अगर कोई दान पुण्य इत्यादि करते हैं बस तीर्थों में जाकर स्नान करता है, लेकिन वो अगर सालग्राम शिला का सामने किया जाए तो कोटि गुण फल होता है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सालग्राम और शिला भित्या मिथ्या वाद को बदन तुज सजाति कुर्मोदर्शन च जावत दई ब्रह्मणो व्यायाम। जो व्यक्ति सालग्राम शिला को राख करके मिथ्या कथा बोलता है, झूठ बोलता है, वो ब्रह्मा का दीप अनार्ध काल तक कष्ट भोग करेगा। सालग्राम शिला भित्या शिकारांग जो पारयेत स प्रयात उसी पत्र च लक्ष मन्नम तरावधि। जो व्यक्ति हाथ में सालग्राम लेकर के जो वचन देता है और उसको पालन नहीं करता है वो उसी पत्र नामक नरक में लक्ष मन्यंतर तक रहेगा। सालग्राम शिला दृष्टवा जाति जानति पपानी देही नाम सिंह दृष्टिया यथा जानति बने मृगो गना भयात। सालग्राम को शिला को दर्शन करने से पाप उस प्रकार भाग जाता है जिस प्रकार सिंहों को दर्शन करके हरिण सब भाग जाता है। तो रोज आप लोग दर्शन कर रहे हो हैं। नमस्कृत्या जो तुज पुर्या सालग्राम शिलार्चनम भक्त्या बा हिदि बा अभक्त स मुक्ति समवापनुयात। Whether one has real devotion or not, if he worships a salagram stone, with purasaran before it, he will surely get incorporated from the cycle of animal existence. जो व्यक्ति सालग्राम शिला का अर्चन करता है वा प्रणाम करता है वो भक्त हो चाहे अभक्त हो उसको मुक्ति मिल जाता है। देखो जो जो सेवां कुरुते नित्यं सालग्राम शिलाग्रतः वैवस्वाद भयं तस्य न सन् मरण जन्मनि। The person who offers a daily service of the Shalagram stone will be freed from the fear and death. जो व्यक्ति रोज शालग्राम शिला का अर्चन करता है वो जन्म मृत्यु भय से बच जाता है वो जन्म और मृत्यु का जो रिधार है उससे निकल जाता है। वैभव सदर्म कृष्ण नौ सात जन्म मरना ही शालग्राम और शिलायंत सर्वदा वसते हरि प्रत्येक मृत्यु देवो देवो जनार्दन भगवान शालग्राम शिला में सदा सर्वदा निवास करते हैं। दधना घितेन पयसा मधुना तीर्थ बार भी ज स्थापयति देवेश शालग्राम समुद्र भवाम तस्य पुण्य प्रदक्षाम इंद्र दुम्न निबोध में। जो व्यक्ति दूध दही घी मधु और तीर्थवारी गंगाजल जो शालग्राम शिला के अभिषेक करता है उसका पुण्य स्वयं इंद्र भी नहीं कर सकता है। शालग्राम शिलायां सचराचरम सदा वसंती तेनात्र विष्णु तिष्ठति सर्वदा। शालग्राम शिला जिस जिस जगह में है वहां पर भगवान सदा सर्वदा निवास करते रहते हैं। शालग्राम शिला दानं कृतं येन तपार्थिव जिस धरातल में जो व्यक्ति शालग्राम शिला को दान करते हैं स्वर्गे मरते जो पाताले पूज्य वही सपार्थिव। स्वर्ग में मर्त में पाताल में जिस किसी जगह में रहे वो सर्वदा पूजनीय पूज्य होता है। जिस प्रकार चाणक्य ने क्या कहा सदैव पूज्यते राजा, राजा निज अपना देश में पूज्यता है पूजा है लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो पंडित है वो इंडिया जाए चाहे अमेरिका जाए सब जाएगा पूजनीय है। ऐसे हिस्टे न मनसा जेनो स्थापिता पूजित तथा यज्ञ कोटि समं पुण्य मासु तस्मै प्रयच्छति। अगर कोई व्यक्ति मन से भी शालग्राम शिला को स्थापन करके अगर पूजा करता है यज्ञ कोटि समं पुण्य करोड़ों यज्ञों का पुण्य आशु तस्मै प्रयच्छति उनको तुरंत प्राप्त हो जाता है। शालग्राम शिला जत्र पूज्यते पुरुषोत्तमे तत्र योजन मात्र तुम तीर्थ कोटि समन्वित। जिस जगह में शालग्राम का पूजा होता है उस जगह योजन मतलब आत्माइल तीर्थ हो जाता है। ओपि पाप सहस्रनाम करता तब नर भवेत शालग्राम शिला आप पिता पूजते तत्कनाथ। जो व्यक्ति सहस्र पाप भी किया है लेकिन अगर शालग्राम शिला का चरणामृत पी लेता है तो वो सब तुरंत नष्ट हो जाता है। पीतं जन सदा विष्णु शालग्राम शिला जलम कामाशक्त भी जोनितं भक्ति भाव विवर्जित शालग्राम शिला पश्य तस्य पाप क्षय भवेत छिन्न समहासन गर्भवास सुधारण। सेम अर्थ उसका सेम है। अभी चरणामृत कैसे बनता है तुलसी लीव सैंडल पेस्ट डिस्कस गोमूत्र शिला कॉन्च बेल शालग्राम स्टोन पर गंडकी लैम्प ये भेसल ऑफ कॉपर एक तामा का बर्तन ये सब में रख करके शालग्राम का अर्चन होता है। तुलसी चाहिए चंदन चाहिए घंटा चाहिए बाती चाहिए तामा का बर्तन चाहिए और भगवान का नाम का साथ अभिषेक हो। नम पाप राशि पाहकम ये नौ वस्तु जो है पाप को नष्ट करने वाला है। बदंती मुनिया संता सर्व शास्त्रों को विद्या समस्त शास्त्र तार स्वर में यही कहते हैं। इस प्रकार सालक ग्राम का बहुत सारा महत्व है। तो अगर आपको सालक ग्राम चाहिए चाहिए तो हमारा कृष्ण शिष्य प्रभु यहां पर बैठा हुआ है। हम दोनों नेपाल गया था, हम लोग बहुत सारे उठा के लेके आया, लेकिन हम लोग को पुलिस नहीं पकड़ा। तीन जाएगा पुलिस का, तो हमने सोचा हमारा इतना सब लेके आ रहा हूं, अब पकड़ा तो हमारा गया। लेकिन ना इंडिया वाला पूछा ना नेपाल वाला पूछा, मैं आराम से रिक्शा में बैठ के आ गया। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन जब इंडिया से नेपाल गया तो पूरा चेक कर लिया, बैग वगैरह के सब चेक किया। तो जब नेपाल से आया तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, तो पूरा सालक ग्राम बांट गया। अभी उनका पास है, उनको आप ले सकते हो। और आप लोग एक कभी मत सोचना जो छोटा और बड़ा। मैंने ग्रंथ पढ़ा था, हिंदी में था, जो पहले महंत लोग सालक ग्राम शिला को अपना आंख का अंदर डाल के रखता था। कितना छोटा होना चाहिए सालक ग्राम, हाथ का मुट्ठी में जो आ जाएगा वो सर्वश्रेष्ठ होता है। जो मुट्ठी गाय से बांधो उसको अंदर आ गया वो श्रेष्ठ है। आमला फल कहा है, शास्त्र में कहा गया आमला फल जैसे सालक ग्राम सर्वश्रेष्ठ होता है, जितना छोटा होगा उतना शुभकर है। और बड़ा बड़ा मंदिर में रखना चाहिए, गृहस्थ के लिए छोटा छोटा है। इसलिए इसका सेवा कौन करेगा? प्रभु जी लोग करेगा, माता जी लोग नहीं करेगा। माता जी लोग अगर ब्राह्मण दीक्षा लिया कर सकता है, लेकिन उनका जो पीरियड आता है वो 5 दिन तक भगवान का बर्तन का स्पर्श भी ना किया करे। छठा दिन कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई चलो 4 दिन निकल गया पांचवा दिन सेवा करें। नहीं, भगवान का सेवा 5 दिन तक उसमें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कि भगवान का जो बर्तन उसको छूना भी नहीं चाहिए। छठा दिन जो है वो भगवान का सेवा कर सकते हैं, अगर ब्राह्मण दीक्षित जो कोई माता जी है तो, नहीं तो नहीं, नहीं तो प्रभु जी लोग क्या काम है। और सालक ग्राम शिला को बा हाथ में कोई स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक हाथ में चंदन कैसे लगाओगे, उसको धोओगे कैसे? इस हाथ में नेपकिन रखना पड़ेगा, नेपकिन का ऊपर सालक ग्राम को रख सकते हो। फिर उसका नीचे एक तुलसी पत्ता का ऊपर चंदन लगा के सालक ग्राम को उसका ऊपर रखने का, फिर दूसरा पता में चंदन लगा करके इस बाजू रख के ऐसे रखने का, बीच में सालक ग्राम रहेगा। ऐसा नहीं होगा तुलसी पत्ता, जैसे झाड़ में वैसा ही है, एक का ऊपर लगेगा और एक का नीचे बाजू लगेगा, बीच में सालक ग्राम रहेगा। बोलेगा हमारे पास सोना का बर्तन है, कोई आवश्यक नहीं है, सोना से तामा श्रेष्ठ है, आप लोग जानते नहीं। तामा से शुद्ध वस्तु कुछ भी नहीं है, सालक ग्राम सेवा करने के लिए तामा का बर्तन सब होना चाहिए। सब तामा का होगा तो सबसे अच्छा है, थाली कटोरी ग्लास आचमन सब सबसे बेस्ट है। कैसे सालक ग्राम का सेवा करने से क्या होगा? गृहस्थ का कर्तव्य सालक ग्राम सेवा करना। बोलेगा गोविंद की सेवा कर रहा हूं, कोई बोलेगा जगन्नाथ सेवा कर रहा हूं, कोई बोलेगा सीताराम का सेवा कर रहा हूं, कोई बोलेगा और कुछ सेवा कर रहा, करो माना नहीं है, लेकिन सबका सब जगह में अधिकार नहीं होता है। ये सब सेवा करने में अधिकार का भी आवश्यक रहता है, प्रतिष्ठा करना भी आवश्यक रहता है। अगर विग्रह को प्रतिष्ठा नहीं किया तो आपका सेवा फालतू है, कोई काम का नहीं है। जिस प्रकार क्या है, मरा हुआ व्यक्ति को कुछ खिलाओगे कुछ खाएगा? ये जिसका विग्रह प्रतिष्ठा नहीं है उसको सभा का ही लाभ है। हाँ, लेकिन भगवान का जो नाम लोगे ना वो नाम आपको उद्धार करेगा। बोलते ना इधर नैवेद्यम कृष्णायाम करके, वो जो कृष्ण बोला उच्चारण ये आपका काम आएगा, लेकिन नैवेद्य भगवान नहीं खाएगा। तो भगवान को उसने प्राण प्रतिष्ठा किया ही नहीं तो भगवान खाएगा कहां से? लेकिन वो कृष्ण नाम बा नारायण नाम बा गोरनीता नाम जो उच्चारण किया वो नाम आपको उद्धार करेगा। इसलिए विग्रह रखना प्रतिष्ठा करना आवश्यक है, लेकिन सालक ग्राम को प्रतिष्ठा करने का कोई जरूरी नहीं है। आप लेके जाओ, पहला दिन पंचामृत में नहाओ, फिर रोज आप पानी में नहाओ, नो प्रॉब्लम। ये पहला दिन रखने के लिए पंचामृत में स्नान कराना जरूरी होता है। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दीक्षा ले चाहे ना ले कर सकता है, लेकिन शूद्र अगर है तो दीक्षा लेना जरूरी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दीक्षा ले चाहे ना ले शालग्राम का सेवा कर सकता है, लेकिन अगर शूद्र है उसको आप दीक्षा लेना अति आवश्यक, नहीं तो शालग्राम का सेवा नहीं कर सकता है। तो कितना सहज है, धो के पी लो, सेवा हो गया। न आपको कपड़ा ढूंढना पड़ेगा, न आपको ड्रेस ढूंढना पड़ेगा, न और कुछ ढूंढना पड़ेगा। भाई कपड़ा किधर है, भगवान का ड्रेस लेके आओ, कुछ भी जरूरी नहीं। अरे भगवान का प्रतिष्ठा करो, कोई आवश्यक नहीं है। साढ़े ग्राम लो, थाली में रखो, गिलास में पानी लो, डाल दो, धो के रख दो, तुलसी पत्र डाल दो, पानी पी लो, भजन हो गया। कितना ईजी है। अगर आप भगवान का सेवा करोगे, उसको भी नहाओ, फिर कपड़ा पहनाओ, फिर ऑर्नामेंट लाओ, फिर गार्लर लगा, ये करो गया, फिर भी उसमें भगवान है कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। शास्त्र कहते हैं जो भगवान का विग्रह में भगवान है कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सालग्राम में भगवान सिहोरी लक्ष्मी जी का साथ सदा सर्वदा निवास करते हैं। अगर आप असूची देश में भी चला गया, लेकिन आपका साथ में अगर शालग्राम है तो देश भी पवित्र हो जाएगा। इतना बड़ा शालग्राम लेने का, और गला में लाल कपड़ा से बांध के, गला में बांध के ब्रह्मांड भ्रमण करो ना, जो व्यक्ति ऐसा करता है वो पूरा ब्रह्मांडों का परिक्रमा कर रहा है। बोलो क्या चाहिए। इतना छोटा शालग्राम लेने का, लाल कपड़ा में बांध के, कॉटन होना चाहिए, नहीं तो सिल्क, तेरी कोट वगैरह मत लिया करो, प्योर सिल्क नहीं तो प्योर कॉटन, उसमें शालग्राम हो और गला में बांधो और ब्रह्मांड परिक्रमा चलते जाओ, लेकिन उसको गला में रखकर मुंह मत करना। तो शिवजी गया था ना, रावण शिवलिंग को लेकर के जा रहे थे लंकापुरी, बोला अगर सुसुक्रिया तो मैं गया, अगर तुम लंका में लेके चला गया तो तुमको कोई नहीं हरा सकता है। रावण खुश हो गया शिवलिंग को लेके जा रहा है। इंद्र सोच में आ गया अभी क्या किया जाए, इंद्र भेजा वरुण को, जाओ उसका पेट में घुसो और उसको सुसु लगना चाहिए। वरुण पेट में घुस गया, अभी सामने देखेगा तो कोई है नहीं, किसके हाथ में दू शिवलिंग को, गणेश बाबा आ गया ब्राह्मण लेकर के, ब्राह्मण बन करके, उनको दिया तुम इसको पकड़ो, बोला हम क्यों पकड़े, बोला नहीं पकड़ो मैं तुमको मार दूंगा, बोला अगर तुम मारोगे तो मैं जा रहा हूं, नहीं 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 मारूंगा तुम पकड़ो, बोला ज्यादा टाइम लगा तो मैं रात के भाग जाऊंगा, मैंने अभी आता हूं। दिया उनका हाथ में शिवलिंग को गणेश हाथ में, रावण मुंह तो करने गया, अभी पेट में तो वरुण है, कितना टाइम लगा ठीक है ना, है बुरुन अपना क्रिएशन चालू कर दिया, चलते रहा घंटा भर। अभी गणेश जी क्या किया, वहीं पर रखे जयराम जी बात दिया, अब जैसे रखा वैसा रावण का सुसुबंध, काम तो हो गया ना इंद्र का। ऐसे ठाकुर जी को राख में रख करके नहीं जाना चाहिए, उस समय किसी के हाथ में दो और अपना सोचा आदि जो किया है वो करो, तो कोई टेंशन नहीं है। कहां भी जाओ भगवान को पूजा कर सकते हो। आप वृंदावन जाओगे बोलेगा हम श्याम सुंदर को सेवा करेंगे, नहीं भी दे सकते हो लोग, लेकिन शालग्राम आपके आस पास है तब वहीं पर तो भगवान का सेवा कर सकते हो ना, टेंशन किस बात का है। तो जो व्यक्ति मथुरा में एक दिन भगवान का सेवा करता है अर्चन, वो भगवत धाम तुरंत जाता है, मतलब तुरंत वो मरेगा नहीं बाबा, चिंता मत करो, मरने के बाद जाएगा। ये शालग्राम का इतना महत्व है। तो अगर आप लोग को शालग्राम चाहिए, कृष्ण शिष्य प्रभु वहां है, बहुत सारे इतना सारे है, आंख बंद करने का, हाथ डालने का, जो आया ले लेने का, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है, जब तक जियोगे तब तक पूजा करने का, ये पहला शर्त है। मरने के बाद चिंता नहीं करने का, जब तक जीवित रहोगे तब तक उसका हम सदा करेंगे, ये पहला शर्त है। नहीं तो भाई आज गया जैसे होता है ना, क्या होता है? आग्रह, विग्रह, गलग्रह, निग्रह। ठाकुर जी दर्शन के, अरे पुजारी लोग कितना अच्छा, हम भी ऐसा सेवा करें। आग्रह हुआ ठाकुर जी को रखने का, कोई गोपाल लेके आया, कोई गौर नेता लेके आया, कोई जगन्नाथ लेके आया, आके ठाकुर जी को साल भर बहुत प्रेम से सेवा किया। फिर क्या हो गया? वृंदावन जाने का है। प्रभु जी मेरा घर में गौर नेता है, इसको कैसे जाऊं मैं? दो ड्राई फ्रूट रख के चला जाऊं? बहुत लोग हमको पूछता है, मैं इसलिए तो बोलता हूं। बोले आप एक काम करो, आप वृंदावन जितने लोग उतने अगर भूखा रहोगे तो आप ड्राई फ्रूट रख के जा सकते हो। अगर आप भूखा नहीं रह सकते हो तो ड्राई फ्रूट रख के क्यों जाओगे? आप भी उसको साथ में लेके जाओ। ठाकुर जी के लेके जाके वृंदावन में क्या घूमेगा? कभी इधर पानी पियेंगे, कभी उधर जाएंगे, इधर खाएंगे, होगा मजा नहीं आएगा। हो गया ना गलत ग्रह, किसी को दे देंगे। कोई अपना बेटा को किसी के पास छोड़ के जाता है क्या? अपना बेटा को साथ में लेके जाएगा, लेकिन ठाकुर जी को ही रख के चला जाएगा। दो गिलास पानी, दो केला रख के चला जाएगा। ऐसा ठाकुर जी के सेवा करने से कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं जो अगर आपको चाहिए तो पहला शर्त है, जब तक जियोगे तब तक, मरने के बाद ठाकुर जी ऐसा रहे नो प्रॉब्लम, लेकिन जब तक जियोगे तब तक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन थोड़ा हाई है, आप लोग को भगवत गीता लेना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग का कोटा में बहुत सारे गीता डाल दिया है, तो सारे दिन साथ साथ हम लोग आपको कुछ गीता देंगे, चाहे 11 हो 21 हो, वो आपको बांटना है। सारे ग्राम वहां रखा हुआ है, आप लोग सारे ग्राम का पैसा नहीं लेने का, क्योंकि जो व्यक्ति सारे ग्राम का पैसा लेता है वो नरक जाता है। भले हम लोग इतना खर्चा करके गया आया, उसका पैसा हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं लेंगे, कोई जरूरी नहीं है, दोगे भी तो नहीं लूंगा, लेकिन भगवत गीता को जरूर देंगे आप लोग को, क्योंकि ये प्रभुपाद जी का मैराथन है, साथ में सेवा हो जाएगा। तो जिसको जिसको चाहिए वहां पर जाओ लाइन में, अभी रहेगा, आंख बंद करके उठाने का, ये अच्छा नहीं, बुरा नहीं है। एक बार लड़की का अगर शादी हो जाता है, बोलता है ये पति थोड़ा टेढ़ा है, वो पति थोड़ा, इसको छोड़ के उसके पास चला जाऊंगा, जाता है क्या? जाता है नहीं? जाता है ना। तो ऐसा ही है, जिसका साथ शादी हो गया वही हमारा परम पति है, तो जो हमारा हाथ में आ गया वही हमारे लिए हिष्ट देव है। ठीक है, चलो हरे कृष्ण। हाँ, एक बात यह है, आप लोग जा सकते हो, थोड़ा मैनेजमेंट के लिए बात है। जब भागवत वक्ता का गला में माला डालते हो, उसमें दो माला और चाहिए, एक तुलसी जी के लिए, एक भागवतम के लिए, क्योंकि नहीं तो पूरा नहीं होता है। कि सामने तुलसी और भागवत रहेगा और एक वक्ता को गला में माला दोगे तो दोनों का अवमानना किया जाता है, इसलिए दो माला बनाया करो, चाहे छोटा क्यों ना हो, चार अंगुलों की हो फिर भी चलेगा। अगर माला नहीं होता है तो चार पांच फूल इसको और इसको देने के बाद ही जो बचता है उसका गला में माला डाला करो।